अध्याय छः, आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन, द सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मोमेंट। यह अध्याय नीरज कुमार सिंह, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से प्राध्यापक हैं, के द्वारा लिखी गई है। 1860 ईस्वी में पश्चिमी देशों से संधि तथा थाइपिंग आंदोलन को कुचलने के बाद बीजिंग में केंद्रीय सत्ता ने अपना प्रभाव बनाना शुरू किया। इसे तुंगचू पुनः स्थापना भी कहते हैं। अतः चीन की प्राचीन परंपराओं को पुनः स्थापित करने के लिए पुराने नीति संहिता तथा ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग पर बल दिया गया। इसके लिए चीन को अपने आंतरिक तथा बाह्य रूप को मजबूत बनाना था, जिसके लिए दो लक्ष्य रखे गए, तजछियांग अथवा आत्म सुदृढ़ीकरण तथा फछियांग या धन एवं शक्ति का संचयन। तजछियांग के तहत पश्चिमी तकनीक तथा कारीगरों द्वारा आयुध कारखानों का निर्माण एवं विस्तार करना था। इसका एक कारण यह था कि अफीम युद्धों एवं थाइपिंग आंदोलन के दौरान पश्चिमी शास्त्रों ने चीनी नेताओं को काफी प्रभावित किया था। फुछियांग का अर्थ चीन को आंतरिक रूप से मजबूत करना था, जिसके लिए उसके साधनों जैसे खनन उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि तथा संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य था। यह आंदोलन, जिसे यांगवू आंदोलन या विदेशी मामलों का आंदोलन की संज्ञा दी जाती है, चीन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सरकारी प्रयास था, ताकि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके तथा विदेशी शक्तियों का मुकाबला कर सके। हालांकि इस आंदोलन में केंद्रीय नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का अभाव था, पर इसके उद्देश्य के कार्यान्वयन में प्रांतीय नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। इनमें तजंग कुओफान, तजुओ हुंगथाग, फंग कुएफान, ली हुंगचांग इत्यादि प्रमुख थे। केंद्रीय सत्ता की कमजोरी और प्रांतीय नेताओं के बढ़ते हुए प्रभाव का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रीय असंतुलन तथा आंदोलन के कार्यक्रमों का क्षेत्रीयकरण इसके मुख्य स्वरूप बन गए। पृष्ठ संख्या 86। 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन में कई आंदोलनों ने जन्म लिया। इनमें सबसे शक्तिशाली थाइपिंग आंदोलन था, जो 1850 ईस्वी से 1864 ईस्वी तक चला। थाइपिंग विद्रोहियों ने, जिनके नेता हुंग सियोच युअन थे, न केवल विदेशी छिंग वंश का विरोध किया, बल्कि वे पश्चिमी शक्तियों के भी खिलाफ थे। इस विचार ने और चीज़ों के अलावा चीन में बढ़ती हुई असमानताओं को भी सामने ला खड़ा किया। हालांकि थाइपिंग आंदोलन को पश्चिमी देशों की मदद से कुचल दिया गया, पर चीन के इतिहास में किसी एक आंदोलन में इतनी ज़्यादा संख्या में जनता का शामिल होना आश्चर्यजनक बात थी। थाइपिंग तथा अन्य विद्रोहों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक तेजी से फैलना चीन के सामाजिक एवं राजनीतिक संकट को दर्शाता है। इन विद्रोहों को दबाने में प्रशासन को विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़ी, ताकि जर्जर प्रशासनिक एवं सामाजिक ढांचे को किसी तरह बचाया जा सके। पर इन आंदोलनों ने समाज में फैली जिन असमानताओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, प्रशासन उन पर ध्यान देने को तैयार न था। दोनों अफीम युद्धों एवं थाइपिंग आंदोलन को दबाने के पश्चिमी शस्त्रों की उपयोगिता एवं चीन में इनके निर्माण को काफ़ी महत्व दिया गया। इसके दो महत्वपूर्ण पहलू थे। इससे आंतरिक विद्रोहों पर आसानी से काबू पाया जा सकता था तथा विदेशी ताकतों से भी मुकाबला किया जा सकता था, परंतु चीनी नेता इस बात को नहीं समझ पाए कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ढांचे में मूल परिवर्तन लाए बगैर शस्त्रागारों से कुछ भी नहीं हो सकता था। चीन पर पश्चिमी देशों का प्रभाव कई और क्षेत्रों में भी था। संधि बंदरगाहों के खुल जाने से विदेशियों का आगमन कई गुना बढ़ गया। वे अब इन बंदरगाहों पर आसानी से रह सकते थे। इसके साथ ही पाश्चात्य विचार व्यवहार संस्थाओं तथा प्रचारकों का तांता लग गया तथा वहाँ एक अलग जीवन शैली विकसित होने लगी जो चीन के लिए बिल्कुल नई थी। इसने इन बंदरगाहों और आसपास के इलाकों में धीरे धीरे परिवर्तन की भावना आने लगी, परंतु चीनी प्रशासन पुरानी संस्थाओं एवं ढांचों में परिवर्तन न लाकर सिर्फ सेना एवं राजनयिक संबंधों में सुधार लाना चाहता था। पश्चिमी देशों का सबसे गहरा प्रभाव चीन के आयुध उद्योग एवं नौसेना पर पड़ा। चीनी नेताओं ने बार बार अपनी सैन्य दुर्बलता एवं अपमानों को याद किया ताकि आयुध उद्योग का तेजी से विकास हो सके। 19वीं शताब्दी तक भी चीन में कन्फ्यूशियस की विचारधारा का गहरा प्रभाव था, इसलिए चीनी समाज में बुद्धिजीवी एवं संभ्रांत वर्ग का प्रभाव बना हुआ था। अर्थात चीनी समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था तथा व्यापारी वर्ग को हे दृष्टि से देखा जाता था। इसके अलावा कन्फ्यूशियस सामाजिक व्यवस्था में सेना का कोई स्थान नहीं था तथा विदेशी शक्तियों से हारने के बाद भी इससे उबरने का कोई उपाय नहीं दिखाया गया था। अतः सेना के महत्व को बढ़ाकर आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन ने कन्फ्यूशियन सामाजिक व्यवस्था को आघात पहुंचाया। चीन में विदेशी शक्तियों के प्रवेश से वहां राजनीतिक ढांचे में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्पश्चात पाश्चात्य कूटनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून ने चीनी करदात्री व्यवस्था ट्रिब्यूटरी सिस्टम विचारधारा को चुनौती दी। खासकर पश्चिमी देशों ने चीन के साथ बराबर की प्रतिष्ठा इक्वल स्टेटस रखने पर बल दिया। यह प्रतिष्ठा उन्हें द्वितीय अफीम युद्ध के बाद मिली जब विदेशी राजनयिकों को पेचिंग में रहने की इजाज़त दी गई। इस व्यवस्था के आ जाने से चीन की मध्य देश मिडल किंगडम की पुरानी धारणा समाप्त हो गई, उससे चीन को भी लाभ हुआ। अब चीन भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो भले सैद्धांतिक रूप से ही सार्वभौमिक था, के दायरे में आ गया। अब चीनी शिक्षाविद तथा कूटनीतिज्ञ आसानी से पश्चिमी देशों में जाकर अध्ययन कर सकते थे। चीन की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था ने अपने आप को आम जनता से विमुख कर लिया। चीनी समाज में प्राधिकृत वर्ग प्रिविलेज्ड क्लास, खासकर कुलीन वर्ग जेंट्री का पूरा बोलबाला था। उन्होंने कानूनी एवं धार्मिक मामलों में कई अनूठे विशेषाधिकार मिले हुए थे। कुलीन वर्ग को दरबार में विशेष महत्व दिया जाता था। कुलीन स्थानीय दंडाधिकारियों और आम जनता के मध्यस्थ बिचौलिए का काम करते थे, न्यायालय के अतिरिक्त समझौता कराते थे, सांस्कृतिक विरासत के रक्षक थे तथा विद्रोहों के समय सैन्य कार्य भी देखते थे। पर चीन के अन्य वर्गों जैसे कृषक, कारीगर, व्यापारी इत्यादि को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। व्यापारी वर्ग को खासकर अविश्वास की नज़र से देखा जाता था। व्यापारी वर्ग को इसके संतुलन के लिए हानिकारक निम्न स्तर देना कृषि प्रधान समाज की रक्षात्मक प्रतिक्रिया का द्योतक है। कुलीन वर्ग की प्रतिष्ठा पाने के लिए अन्य वर्गों में होर लगी रहती थी, परंतु इसके लिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता था जो कठिन होने के अलावा काफ़ी समय लेती थी। किसी अन्य वर्ग के पास इतना समय और पैसा नहीं था कि वे अपने पुत्रों को इस परीक्षा के लिए आसानी से तैयार करा पाते, परंतु कुलीन वर्ग में प्रवेश पाने का एक आसान तरीका उपाधि खरीदने का था जो धनी व्यापारी वर्ग कर सकता था। छिंग शासकों ने भी अपने आप को जनता से अलग समझा। छिंग शासक बाहरी थे तथा उन्होंने 17वीं शताब्दी में मिंग वंश को अपदस्त कर सत्ता हथियाई थी, अतः आम जनता भी उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती थी। इसका उदाहरण हमें 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के विद्रोहों में मिलता है, जिनका एक मुख्य नारा था, छिंग को हटाओ, मिंग को गद्दी पर बैठाओ। छिंग शासकों ने जनता की भलाई की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप धीरे धीरे शासक तथा जनता के बीच का अंतर बढ़ता गया। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते चीन की आर्थिक दशा दयनीय हो गई थी। सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे में पिछली कई सदियों से कोई परिवर्तन नहीं आया था। चीन की सारी कृषि भूमि कुलीन वर्ग तथा अन्य धनी परिवारों के पास थी। आम जनता के पास बहुत कम या नहीं के बराबर जमीन थी। उन्हें उपज का 50% जमीन के लगान के रूप में देना पड़ता था, और चूंकि लगान नगद देना पड़ता था न कि अनाज के रूप में, इसलिए लगान 30% और बढ़ जाता था। अतः गरीब किसान मुश्किल से निर्वाह कर पाता था। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जमीन की इकाई घटती गई, फलस्वरूप कई किसान जमींदारों के काश्तकार हो गए। लगातार बढ़ती लगान दर तथा प्रति व्यक्ति जमीन की इकाई में कमी का एक सीधा प्रभाव यह हुआ कि अनेक बेरोजगार काश्तकार शहर चले गए, जहां उन्होंने अन्य पेशों का सहारा लिया, जैसे कूली, बंदरगाहों पर श्रमिक, नाविक इत्यादि। इसके अलावा बेरोजगार आबादी का एक बड़ा भाग गाँव में ही रह गया, जिन्होंने बाद में कृषक विद्रोहों में अहम भूमिका निभाई। अफीम युद्धों के बाद चीन और विदेशी राज्यों के व्यापारिक संबंधों में काफ़ी परिवर्तन आया। अब विदेशी व्यापारियों को सिर्फ 5% आयात शुल्क देना पड़ता था, जिससे व्यापार से होने वाली आय में काफ़ी कमी हुई। इसके अलावा तांबा चांदी विनिमय दर, कॉपर सिल्वर एक्सचेंज रेट भी अव्यवस्थित हो गई, जिससे विनिमय दर में 100% की वृद्धि हो गई, फलस्वरूप आय घटकर आधी रह गई। संधि बंदरगाहों पर विदेश निर्मित सामान का बोलबाला रहने लगा, जो द्वितीय अफीम युद्ध के बाद और भी बढ़ गया। विदेशी सामानों के चीन में बड़े पैमाने पर प्रवेश से स्थानीय घरेलू उद्योग को गहरा आघात पहुंचा। अफीम युद्ध का चीन पर एक और प्रभाव पड़ा। 1842 की नानचिंग की संधि तथा इसके बाद की संधियों के फलस्वरूप चीन के पूर्वी तट के कई बंदरगाह विदेशियों के लिए खोल दिए गए। इन बंदरगाहों पर धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी तथा ये आधुनिक केंद्र बन गए। अतः इन क्षेत्रों की जीवन शैली चीन के अन्य भागों से बिल्कुल भिन्न हो गई। 1860 ईस्वी तक आते आते चीन की दशा इतनी खराब हो गई कि यदि दृढ़ कदम नहीं उठाए जाते तो छिंग शासन का पतन निश्चय था। द्वितीय अफीम युद्ध की हार से न सिर्फ चीनी प्रशासन हिल गया था, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग पर भी इसका गहरा असर पड़ा। अतः इन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए राजकुमार कुंग ने पेचिंग में राजसत्ता को पुनः स्थापित करने का उत्तरदायित्व लिया। प्रांतीय नेताओं जैसे तजंग, तजुओ, ली इत्यादि ने अपने अपने राज्यों में इस सुधार का कार्य प्रारंभ किया। स्वयं सुधार आंदोलन का उद्देश्य इन्हीं प्रांतीय नेताओं की मदद से पूरा किया जाना था।